ओम शांति। आज 28 दिसंबर 2023 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। आज की मुरली का सार मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, दान सदा पात्र को देना है। दान सदा किसको देना है? पात्र को देना है। फालतू समय वेस्ट नहीं करना, फालतू समय वेस्ट नहीं करना है। हर एक की नब्ज देखो कि सुनते समय उनकी वृत्ति कहाँ है, उसको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। सुनते समय बहुत ध्यान देना है कि कोई जिसको हम मुरली सुना रहे हैं, जिसको हम ज्ञान सुना रहे हैं, जिसको हम कोर्स करा रहे हैं, वो सुन भी रहा है या नहीं, या आंखें नीचे करके या इधर उधर देख रहा है, इसका मतलब उसको इंटरेस्ट नहीं है। तो वहां अपना समय क्यों बर्बाद किया जाए? ठीक है कि नहीं? इसको देखना है अच्छी तरह से। प्रश्न, पावन दुनिया में चलने के लिए तुम बच्चे बहुत भारी परहेज करते हो। पावन दुनिया में चलने के लिए तुम बच्चे बहुत भारी परहेज करते हो, और तुम्हारी परहेज है तो क्या है? तुम्हारी परहेज क्या है? क्या परहेज बताओ? पवित्रता के लिए तो करते हो, परंतु करते क्या हो उसके लिए? एक हम खान पान को शुद्ध रखते हैं जिससे हमारा सतो प्रधान खाना हो, जो हमारे शरीर को सुख दे, शक्ति दे, स्वस्थ रखे। हम ऐसा खाना खाते हैं। और क्या परहेज करते हो? हम वो खाना नहीं खाते जिससे हमारे शरीर को कोई भी नुकसान हो। ऐसा भोजन हमने नहीं खाना रजो प्रधान या तमो प्रधान, जो हमारे शरीर को क्या करे? रोगी करे। और क्या करते हो? श्रीमत तो सारी है, श्रीमत में ही तो यह है सारा कि हमने वो भोजन खाना है जो हमारे शरीर को, क्योंकि इस शरीर के द्वारा हमने भाग्य लिखना है, तो भाग्य तब लिखा जा सकेगा जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा। यदि हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं, हम भाग्य क्या लिखेंगे? हमने गलत खान पान रहन सहन किया, अब दूसरा विषय क्या होगा? सबसे पहली बात हमें देखनी है कि मैं आत्मा हूं, ये स्मृति में रखना। बार बार हमारे जो संकल्प हैं वो विकृत कब होते हैं? जब हम देह समझते। देह समझने से हमारे अंदर देह को गलत खिलाने की इच्छा होगी। देह को गलत खाना कौन खिलाएगा? जो देह के आकर्षण में होगा, ये बहुत टेस्टी है, ये बहुत शरीर को शक्ति देने वाला है। ठीक है, वो क्या है कि देह का प्रभाव है। इसलिए सबसे पहली जो परहेज है हमारी, वो देह विस्मृति की है, आत्म स्मृति की है। सबसे पहला बात हमको ध्यान देना है कि मैं आत्मा हूं, मैं ये देह नहीं हूं। मुझे आत्मा के लिए पुरुषार्थ करना है, इस देह के लिए पुरुषार्थ नहीं करना। देह की तो डिमांड इतनी ज्यादा है, एसी नहीं है तो घर है, मेरा जीवन है ये, बाकी सारे एसी में आराम से सोए पड़े हैं, और मैं, ये क्या है? देह समझने के कारण आएगा ना। यदि हम अपने आप को आत्मा समझे और हमें ड्रामा की नॉलेज हो, तो हम जरा भी हलचल में नहीं है। ठीक है, मुझे जो मिला है, जो स्थान मिला है, जो सुविधा मिली है, मुझे उसका लाभ उठाना है, उसी में संतुष्ट रहना है। ठीक है, परहेज सबसे बड़ी यह है कि दूसरा, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हुए कमल फूल समान लेना है। कमल फूल समान माना परिवार की किसी भी वस्तु किसी भी व्यक्ति में आकर्षण नहीं, किसके बिना क्या होगा, आकर्षण नहीं मतलब के इसके बिना क्या होगा। हम उनको आधार बना लेते हैं कि ये मेरे बुढ़ापे का सहारा है। किसने आकर के सहारा बनना है, किसने बैठे हुए भी सहारा नहीं बनना है, नहीं? वो अपने पाठ के अनुसार बनेगा। अब मैं उसके लिए कोई ऐसी गलती ना करूं कि ये तो मेरा अपना है ना, इसके लिए मैं कुछ गलती करूंगा तो ये मेरे काम आएगा। गलती से काम नहीं आएगा, मैं उसके साथ भी और सबके साथ भी अच्छा व्यवहार करूं, सब मेरे काम आएंगे। सबसे भारी परहेज है कमल फूल समान न्यारा और प्यारा रहना। हमारा त्याग है सारी बेहद की पुरानी दुनिया का। ये परहेज है हमारे लिए कि हमें ये देह अपनी तरफ ना खींचे, देह का संबंध हमें अपनी तरफ ना खींचे, और जो मैंने इकट्ठी करके रखी है देह के यूज के लिए साधन, उनमें से कोई भी साधन मुझे अपनी तरफ ना खींचे। ये बात कितना मैं अपने आप को बैठकर समझाऊंगा, कितना मैं इससे न्यारा बनूंगा, वो परहेज है सारी वेद की। एक आंख में हमारी बुद्धि में सिर्फ एक आंख में स्वीट होम और दूसरी आंख में स्वीट राजधानी, बस मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम, बस ये मेरी आंख में हो। मुझे घर जाना है, ये संसार की कोई चीज मेरे साथ जाने वाली नहीं, और जीवन मुक्ति धाम मैंने जितना अकर्म का खाता बनाया है वो मुझे स्वर्ग में राजधानी में ले जाने वाला है। बस मेरे को अटेंशन दो ही बातें, मैं आत्मा और घर जाने के लिए अकर्म का खाता, और मेरे साथ कुछ भी जाने वाला नहीं। विकर्म का खाता नहीं जाएगा, विकर्म का खाता नहीं जाएगा, खाते सारे बराबर होंगे, चाहे खाता अकर्म का हो तो चाहे विकर्म का हो, परंतु दोनों खाते बराबर होंगे। परंतु हमारे पास अकर्म का खाता है तो हम सतयुग में जाएंगे। हमारे पास अकर्म का खाता नहीं है, विकर्म का खाता है तो हम द्वापर कलयुग में आए। हम सतयुग त्रेता में जा ही नहीं सकते यदि हमारे पास अकर्म का खाता नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है कि अकर्म का खाता बनाओ, क्योंकि अकर्म का खाता सिवाय संगम के और कभी बन नहीं सकता। बाबा की श्रीमत पर आए बिना अकर्म का खाता नहीं बन सकता। विकर्म का खाता तो द्वापर से बनता आया, परंतु हमारी चढ़ती कला वाला खाता वो सिवाय बाबा की श्रीमत के कभी नहीं बन सकता, कभी भी। तो वो जिसने जितना बनाया उतना वो सत्युग त्रेता में आएगा, इसलिए अकर्म का खाता बनाने के लिए कहा जा रहा है, अदरवाइज कहने की जरूरत नहीं थी। और ये बात सुनेंगे भी वही जिन्होंने बनाना होगा। जिन्होंने बनाना नहीं है, जिनका पार्टी ड्रामा में नहीं है, वो मुरली पढ़ते हुए वो मुरली सुनते हुए ये बात सुनेंगे नहीं, और वो अपना खाता बनाएंगे। सुनेंगे नहीं, उनके लिए है ही नहीं। उस समय वो क्लास में बैठे हुए भी उनकी बुद्धि में कुछ और ऐसा विचार आएगा, वो लाइन उसकी बुद्धि से सुनाई नहीं देगी उसको जो उसके ऊपर पड़े। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना, पुरानी दुनिया में रहना है, पुरानी दुनिया को देखना है, परंतु उसके बुरे प्रभाव से भी प्रभावित नहीं होना, उसके अच्छे प्रभाव से भी प्रभावित नहीं होना। यह है देखते हुए ना देखना। अच्छी बात है तो भी ठीक है, खराब बात है तो भी ठीक है, सब ठीक है। राइट इज राइट, रॉन्ग इज राइट, इसका मतलब है साक्षी।
राइट को तो मानना चाहिए ना,
राइट इज राइट, रॉन्ग इज ऑल्सो राइट, इसका मतलब है साक्षी। साक्षी बनना है तो दोनों बातों को मानना होगा।
नहीं,
गलत को क्यों हो रहा है गलत, और आपके साथ क्यों हो रहा है गलत? यही तो होगा ना। तो जब ड्रामा में है वो होगा, अब मेरे गलत होने पर मैंने दुखी होकर अपने वर्तमान को बर्बाद किया, तो मैंने अपना घाटा किया कि फायदा किया? ये परहेज है, ये परहेज है। गलत पर अमल नहीं करो, परंतु कोई ने गलत कर दिया, अब आप उस बात को पकड़कर बैठे हो और वर्तमान का बेड़ा गर्क कर रहे हो, तो अपना भाग्य खराब कर दिया ना। अब आप चाहते तो इस समय श्रेष्ठ भाग्य बना सकते थे, नहीं बनाया। ये परहेज है। तो परहेज तभी हो सकती है जब हमारी बुद्धि में हो कि राइट इज राइट, रॉन्ग इज आल्सो राइट। ये है बहुत बड़ी परहेज, और इस परहेज से पावन दुनिया में चले जाते हैं। जब ये परहेज रखेंगे और भी बहुत सारी बातें आएंगी, परंतु तभी आप कहां जाएंगे? पावन दुनिया में जाने के लायक बनेंगे। गीत, धीरज धर मनुआ, तेरे सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। गीत सुनने से ही बच्चों की खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। गीत सुने और उनको क्या हो जाए? खुशी हो, क्या भगवान आ गया है और सुख के दिन आए कि आए। क्योंकि दुनिया में दुख तो है ही, मनुष्य मात्र है ही नास्तिक। सारे मनुष्य, मनुष्य मात्र का मतलब है इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं वो सारे के सारे क्या हैं? नास्तिक, अर्थात बाप को नहीं जानते, अर्थात बाप को नहीं जानते। अब तुम नास्तिक से क्या बन रहे हो? आस्तिक बन रहे हो। तुम बच्चे अब जानते हो कि हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। कहीं भी तुम जाते हो, कहीं भी तुम जाते हो, तो पहले पहले तुम अपना परिचय दो। क्या परिचय देंगे? हम अपने को ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी क्यों कहलाते हैं? अपना परिचय पे हम बीके हैं, तो बीके क्यों? आप भी इंसान हो, हम भी इंसान हैं, आप बीके क्यों? ये आपने उनको परिचय देना था। क्या परिचय देंगे? आप बीके क्यों? ब्रह्मा है प्रजापिता, शिव का बच्चा, ऊंचे से ऊंचे उस निराकार को कहा जाता है शिव बाबा। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर तो उनके बच्चे हैं और हम ब्रह्मा के बच्चे, इसलिए हम हैं ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। हम शंकर के बच्चे नहीं, हम विष्णु के बच्चे भी नहीं, ब्रह्मा के बच्चे। भाई कैसे ब्रह्मा के बच्चे बन गए आप? ब्रह्मा है हमारी बड़ी माँ, शिव बाबा ने आकर हमें इस ब्रह्मा के द्वारा एडॉप्ट किया। देखो ये पॉइंट अच्छी तरह पहले अपने आप को समझाओ, तारण करो। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण को प्रजापिता नहीं कहेंगे, ना लक्ष्मी नारायण को कहेंगे, ना विष्णु को कहेंगे, ना शंकर को कहेंगे, ठीक है, ना राधे कृष्ण को कहेंगे। एक ब्रह्मा को ही कहा जाता है प्रजा पिता, तो वह हम सब का पिता है, उसने हमको एडॉप्ट किया है। एक एडॉप्ट किया है शिव बाबा ने, शिव बाबा ने एडॉप्ट किया है हम आत्मा को, तो हम है शिव कुमार, ठीक है। और ब्रह्मा बाबा ने हमें एडॉप्ट किया है जीव आत्माओं को, तो हम है ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, ठीक है। प्रजापिता ब्रह्मा नाम मशहूर है, ये है प्रजापिता साकार, और वो सूक्ष्म वतन वाला ब्रह्मा, वहां कोई वो उस ब्रह्मा को प्रजापिता ब्रह्मा नहीं कहेंगे, क्योंकि वहां कोई प्रजा नहीं है, वहां कोई जीवन नहीं है, सूक्ष्म वतन में कोई जीवन नहीं है। ये बुद्धि में हमारे स्पष्ट रहे, कभी भी बात करते हुए हमें एकदम याद रहे, ये है प्रजापिता साकार। अब स्वर्ग का रचयिता तो परमपिता परमात्मा शिव है, स्वर्ग का रचयिता ब्रह्मा नहीं है, स्वर्ग का रचयिता ब्रह्मा नहीं है, परमपिता परमात्मा शिव है, स्वर्ग का रचयिता ब्रह्मा नहीं है। अभी अभी मुकर गया और कल परसों बाबा ने क्या कहा कि मैं रचवाता हूं, इस ब्रह्मा के द्वारा ये रचता है, रचवाता हूं, तो जिसके द्वारा रचवाएंगे वो रचता हो गया, परंतु मैं रचवाने वाला हूं, मैं रचवाने वाला हूं, मुझे रचवाने वाला होने के कारण रचयिता कह देते हैं, बाकी मैं रचवाता इससे हूं। ये अपने आप नहीं रच सकता, मैं ना आऊं, मैं इसको ना बताऊं तो ये कुछ भी नहीं कर सकता। ये बात याद रखें, क्यों रचयिता है और क्यों रचवाता है, ये बात हमारी बुद्धि में क्लियर रहे। हाँ जी, खेल तो खैर ड्रामा का है, परंतु कंसेप्ट तो क्लियर होना चाहिए, सिद्धांत नियम हमारी बुद्धि में होना चाहिए कि बात कहां परिवर्तन हो जाती है। निराकार परमात्मा ही आकर प्रजापिता द्वारा, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग रचते हैं, रचते इसके द्वारा हैं, क्योंकि खुद नहीं रचते। क्यों नहीं रचते कि मैं रचूं तो मुझे वहां जाना पड़े, एक ईंट ना लगावे, एक तिनका उठा के ना रखे, बस तिनका भी उठाने तो कहेगा उठा के रख, तैने यूज करना है, मैंने यूज नहीं करना, मैंने तो वहां जाना ही नहीं है।
कमांड कंट्रोल तो उसी में है।
हाँ, कमांड कंट्रोल तो है, छोटा सा भी तिनका उठा के नहीं रखता, क्योंकि रखूंगा तो मेरे को जाके फिर उसको यूज करना पड़ेगा। हम उनके बच्चे कितने ढेर हैं, आत्माएं तो है ही परमपिता परमात्मा शिव की संतान। समझाने का बड़ा अच्छा तरीका चाहिए, बोलो हमको वे राज योग सिखलाते हैं इस ब्रह्मा के द्वारा, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं इस ब्रह्मा के द्वारा, क्योंकि ब्रह्मा ना हो तो वो भी ना समझा सके, ब्रह्मा ना हो तो वो भी समझा ना सके। तो पहले ये ब्रह्मा सुन लेता है, जब मैं तुम्हें समझाता हूं तो ये बीच में दलाल सुन लेता है, जगत अंबा भी सुन लेती है, क्योंकि वो हर टाइम बाबा कुछ बोले सामने रहती है। हम है बीके, बीके ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, गाया भी जाता है, कन्या वे जो 21 कुल का उद्धार करे, एक जन्म का सुख दे, 21 कुल किसके किसके 21 कुल तारेंगे, हर एक आत्मा ने अपने 21 कुलों को तारना है, कोई भी आत्मा किसी दूसरे के 21 कुलों को तार नहीं सकती, परंतु शिव बाबा की तरह किसी को भी अपने 21 कुल तारने की विधि सिखा सकती है। लाइन समझ में आई है, भी आपने अपने 21 कुल तारे, अब आपने किसी एक और आत्मा को सिखा दिया, देख जैसे मेरे 21 कुल सुधर रहे हैं, तुम भी अपने 21 कुलों को सुधारो। आपसे जैसे बाबा ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग रचवाते हैं, ऐसे आप दूसरे को भी अपना स्वर्ग रचने की विधि सिखा सकते हैं, परंतु आपका एक भी कर्म उसको नहीं परिवर्तन कर सकता, उसके काम नहीं आ सकता। समझ रहे हैं बात को? नहीं,
जब उसको हम सहयोग दे रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई हमारे मुताबिक उसका भी कुल का उद्धार हो।
आप जैसे परमात्मा आते हैं, वो आकर के सिखाते हैं ना,
ठीक है,
और उसमें वो कोई ईंट नहीं रखते, कोई तिनका नहीं रखते, ठीक है कि नहीं। ऐसे ही आप भी यही सोचकर निमित्त बनकर जैसे परमात्मा एकदम न्यारा और प्यारा होकर सुधर तेरी मर्जी ना सुधर तेरी मर्जी, आपने भी उन आत्माओं को उसी प्रकार से समझाना है। और ये याद रखना है कि उसके किए कर्म का फल मुझे नहीं मिल सकता, मेरे किए कर्म का फल उसको नहीं मिल सकता। मैं केवल रास्ता दिखा रहा हूं, अब चलना या ना चलना वो उस आत्मा का पार्ट है, वो मेरे से भी तीखा जा सकता है और ढीला भी रह सकता है, क्योंकि उसने वो पुरुषार्थ करना है जो उसके पार्ट में है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ समझाने वाला,
आपका परिचय देने वाला,
अनुभव देने वाला हूं। जो मैंने अनुभव किया है वो अनुभव भी मैंने उनको देना है। 21 जन्म का सुख दे, हम परम पिता परमात्मा से 21 जन्म सतयुग त्रेता में सुख पाने के लिए वर्षा लेते हैं, बरोबर बरोबर 21 जन्म सतयुग त्रेता में भारत सदा सुखी था। जब इस धरती पर सतयुग था, त्रेता था, तो भारत क्या था? सदा सुखी था। अब भारत दुखी हो गया है। अब भारत क्या हो गया है? दुखी हो गया। भारत यही सुखी था और अब क्यों सुखी था? क्योंकि पवित्र था। वो हमारा बाबा है और ये हमारा दादा है। शिव रावण थोड़ा है, ये शिव बाबा हमारा दादा बाबा है और ब्रह्मा हमारा दादा है। अब जिसके पास इतने बच्चे हैं उनको तो कोई परवाह नहीं, उनको तो कोई परवाह नहीं कितने उनके बच्चे हैं। और हमको ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा राज योग सिखलाते हैं, इस बेहद के बाप से हमको वर्षा मिलता है। सारी दुनिया पतित है, उनको पावन करने वाला एक बाप है। पार पुरानी दुनिया को बदलने वाला स्वर्ग का रचयिता वे सतगुरु है, सर्व का सदगति दाता। नई दुनिया में है ही लक्ष्मी नारायण का राज्य, भारत में जो देवी देवताओं का राज्य था वो देवताएं ही 84 जन्म लेते हैं, फिर वर्ण भी बताने पड़े, समय पहले से ही लेना चाहिए। पहले उनसे क्या लेना चाहिए? समय लेना चाहिए, ठीक है। क्या बताने हैं? वर्ण बताने हैं, ठीक है। और समय कितने वर्ण है हमारे? चार वर्ण है, युग पांच, तो वर्ण चार क्यों?
पांच वर्ण
कैसे, कौन कौन से?
देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र और
ब्राह्मण। पांच युग है तो हमारे पांच वर्ण है। समय पहले से ले लेना चाहिए। बोलो, इन बातों को चित लगाकर अच्छी रीति सुनो, बुद्धि को भटकाओ मत। भाई जी व बहन जी, तुम सब वास्तव में शिव की संतान हो। प्रजापिता ब्रह्मा तो सारे सिजरे का हेड है, सारे सिजरे का हेड है। सिजरा याद आता है ना? नक्शा, ठीक नहीं, मैप या ट्री। और वैसे शिव बाबा कहता है मैं हूं वृक्षपति, वृक्षपति शिव बाबा, और वृक्ष का हेड ब्रह्मा। समझ में आया? क्योंकि वो उसकी सजनी है भाई, वो डॉक्टर है तो वो डॉक्टर नहीं है ही है ना। हाँ बिल्कुल, सीधी सी बात होती है। परंतु वो है कैसे, अंतर है वो हमें पता है। वो आत्माओं का पिता है और वो जीवात्माओं का। तो इसके लिए जो हमारा परम धाम में है उसका हेड है शिव बाबा, और इस वृक्ष का जीव आत्माओं का हेड है ब्रह्मा, और वृक्ष का पति है शिव बाबा, क्योंकि ब्रह्मा है बड़ी माँ पत्नी, तो इसलिए वृक्षपति है शिव बाबा। पर ये बात हमको समझाने आना चाहिए, तो समझना है पहले फिर समझा सकेंगे। पर बाबा के एक एक ज्ञान की बात हम अपनी बुद्धि को समझाएं। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण उनसे वर्षा ले रहे हैं, योग बल से विश्व का राज्य पाते हैं। जितना हम योग माना बाबा की श्री मत पर चलते हैं, उसके आधार पर हम स्वर्ग का राज्य पाते हैं, ना कि बाहु के बल से, शरीर की ताकत से नहीं, बंदूक के आधार पर नहीं, गोली के आधार पर नहीं। वो तो मूर्खता का युद्ध है, जितने भी लड़ाइयां कर रहे हैं सब मूर्खतापूर्ण लड़ाई। हम घर बार नहीं छोड़ते, हम घर बार नहीं छोड़ते, हम तो अपने घर में रहते हैं। ये स्कूल है मनुष्य से देवता बनने का, मनुष्य तो कोई देवता बना ना सके, मनुष्य तो कोई देवता बना ना सके। ये दुनिया ही पतित है, पानी की गंगा तो पतित पावनी नहीं है, पानी की गंगा तो पतित पावनी नहीं है। बार बार उसमें स्नान करने जाते हैं, बार बार उसमें स्नान करने जाते हैं, पावन बनते ही नहीं। ऐसे ही रावण का भी मिसाल है, बार बार जलाते रहते, बार बार जलाते रहते हैं, रावण मरता ही नहीं। ये रावण वाला पोस्टर भी ले जाना चाहिए, कोई ऐसी बड़ी जगह जाओ तो एल्बम भी ले जाना चाहिए, देखो ये सब बच्चे हैं, सभी की प्रतिज्ञा की हुई है पवित्र रहने की। सबने क्या प्रतिज्ञा की है कि हम पवित्र रहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा सिजरे का हेड है, प्रजापिता ब्रह्मा सिजरे का हेड है। इस समय प्रैक्टिकल हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं, तो हमें ये भी बात अपनी बुद्धि में सदा रखनी है। झाड़ के नीचे ब्रह्मा बाबा और मम्मा को बिठाया है, तो यहां जो है ना दुनिया की नजर संसारिक होने के कारण कहेगी कि ये प्रजापिता ब्रह्मा है, ये जगत अम्बा है, ये जगत पिता है और ये जगत अम्बा है, इसके इनके हम बच्चे हैं। क्योंकि बेड़ा गर्क शास्त्रों का इसी बात से होगा, तो हमें याद रखना है कि ब्रह्मा माँ है, इसके कारण वो हेड है, मम्मा हेड नहीं है, मम्मा ब्रह्मा की पत्नी नहीं है। मतलब ये बात हमें हर हालत में अपनी बुद्धि में क्लियर रखना है, और सामने वाले को ये डाउट खड़ा होने नहीं देना है, ये डाउट उसका भी साथ के साथ क्लियर कर देना है। मम्मा तो केवल माताओं को संभालने के लिए है बस, और कोई नहीं। क्योंकि ब्रह्मा बाबा हो गया, भाइयों को संभालेगा, तो भाई जो थे ये कराची के अंदर यही सब रखा गया कि मम्मा बहनों के साथ रहेगी और भाई ब्रह्मा बाबा के साथ रहे। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो पति पत्नी है, मम्मा बेटी है वो पत्नी नहीं है, वो भी ब्रह्मा कुमारी है। मम्मा भी क्या है, ब्रह्मा की बेटी है, पत्नी नहीं। इन चित्रों के कारण ही तो ज्ञान को आप जो भगत लेंगे, जिन्होंने आकर के समझना है, उन भक्तों की बुद्धि में ये बात रहेगी कि ब्रह्मा पिता है और उनकी बेटी है जगत अम्बा, और ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां इनके द्वारा उन्होंने पैदा की। वो ये भ्रांति अभी से अपने अंदर लेकर के जाएंगे, ये नहीं कि वहां जाकर बनेगी, उनको ये कंसेप्ट अभी क्लियर नहीं होगा, और तो वहां जाकर के फिर जब शास्त्र लिखेंगे तो उसमें फिर गपोड़े लिखेंगे। ये बात हो तुम भी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, परंतु तुम पहचानते नहीं हो। अभी दुनिया में कोई सच्चा ब्राह्मण नहीं है, कोई दुनिया में सच्चा ब्राह्मण नहीं है। सच्चे ब्राह्मण तो हम हैं, राज्य भी हम पाते हैं, फिर ये ब्राह्मणों का सिजरा, ये ब्राह्मणों का सिजरा, ब्राह्मण है चोटी, ब्राह्मण है चोटी। बच्चों को समझाया है श्री कृष्ण भगवान नहीं है, बच्चों को बाबा कहते मैंने समझाया है श्री कृष्ण भगवान नहीं है, वो तो पूरे 84 जन्म लेते हैं, 84 जन्म पूरे होते ही फिर देवता बनना है, कौन बनाए? अब उनको देवता कौन बनाए 84 जन्म पूरे होने के बाद? बाप बनाते हैं। हम उनसे राजयोग सीख रहे हैं, उनकी ही महिमा है। एक ओंकार सतनाम वाहेगुरु, वो है निराकार निरहंकारी, उनको आकर सर्विस करनी पड़ती है। पतित दुनिया पतित शरीर में आते हैं, अभी वही गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है, महाभारी महाभारत लड़ाई लगी थी। सो अब मच्छरों सदृश गए थे, सब कैसे गए थे? मच्छरों सदृश आत्माएं अपने घर गई थी, अब वो समय आ गया है, सारी आत्माएं वापस परम धाम जाएंगी, ये शरीर छोड़ दे। श्री भगवान वाच है, किसी और ने नहीं कहा है, वह रचयिता। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, सृष्टि को सतो प्रधान बनाना ये एक बाप का ही कर्तव्य है। हम उनके उनको बाबा बाबा कहते हैं, वे आते जरूर हैं, शिवरात्रि भी है, इसका अर्थ भी बताना चाहिए, पॉइंट नोट कर फिर धारण करनी चाहिए, पॉइंट्स बुद्धि में रहनी चाहिए। कन्याओं की बुद्धि तो अच्छी होती है, कन्याओं की बुद्धि तो अच्छी होती है, कुमारी के पैर धोते हैं क्योंकि वो पवित्र है। तो कुमार और कुमारियां दोनों पवित्र, पवित्र तो कुमार भी होते हैं जब तक शादी नहीं हुई है, फिर भी फिर कुमारी का नाम क्यों गाया जाता है? क्योंकि तुम्हारा अभी का जो नाम है, कुमारियों का अभी का जो नाम है कि कन्या वे जो 21 कुल का उद्धार करे, तो वो तुम्हारा मान चला आया है। परंतु उन्होंने क्या समझा, 21 कुल का उद्धार कैसे करेगी? उन्होंने समझा ये हमारा बेटा पैदा करेगी, वो हमारे 21 कुल की पड़ी हुई आत्माओं को भी स्वर्ग में भेज देगा। कैसे भेजेगा? उसके लिए उन्होंने झूठी कहानी बनाई भागीरथ की। भागीरथ ने अपने 21 कुलों का उद्धार किया था। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा। हाँ, क्यों लाया था नीचे? कि उसके 21 कुल के पितरों की हड्डियां पड़ी हुई थी यहीं पर धरती पर, जिसके कारण वो नरक में थे। अब वो हड्डियां गंगा जी को स्पर्श करें तो स्वर्ग में जाए। अब गंगा तो थी नहीं ना धरती पर, तो भागीरथ गंगा को नीचे लाया और भागीरथ को गंगा ने कहा कि मुझे उधर उधर ले चल जहां तेरे पूर्वजों की हस्तियां पड़ी हैं, और मैं उनके ऊपर से जाती जाऊंगी और वो स्वर्ग में चले जाएंगे। इसीलिए हरिद्वार में लिखा हुआ है, जब तक अस्थियां गंगा में रहती हैं तब तक वो आत्मा स्वर्ग में रहती है। अब जिसकी अस्थियां यदि गंगा जी में नहीं डाली वो तो नरक में जाएगा ना। इसलिए बच्चा चाहिए जो मेरी अस्थियां कहां डाल के आवे? गंगा जी में डाल के आवे। ठीक है, इसलिए बच्चा चाहिए। पर तू ये नहीं पता कि हड्डियां भी मिट्टी हैं।
जिसका प्रभु दूर की तरफ आया वो तो उसी में जल में डालते हैं।
अब जो ना जा सकते जो वहमी आदमी है वो वहां डाल के आते हैं, और जो वहम नहीं करते हैं वो वहां डाल देते हैं, और जो मुस्लिम है वो जहां भी मर्जी है गड्ढे में डाल देते हैं, पड़ी सड़ गई खत्म। फिर ना एक हाँ वो डाल दी बस खत्म, बात वही पड़ी रहेंगी खत्म हो जाएंगी, नमक डाल दिया खत्म हो जाएंगी। मतलब कहने का है कि उनके हरिद्वार में नहीं जाती ना, तो करे वे तो तुम्हारा मान चला आया, हम भारत की रूहानी सेवा करते हैं, हमारा उस्ताद मददगार परम पिता परमात्मा शिव है, उनसे हम योग बल से शक्ति लेते हैं, जिससे हम 21 जन्म एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते, ये गारंटी है। कलयुग में तो सब रोगी हैं, आयु भी कम है, सतयुग में इतनी बड़ी आयु वाले कहां से आए, इस राज योग से इतनी बड़ी आयु वाले बनते हैं, वहां अकाले मृत्यु नहीं होता, अकाले मृत्यु यहां भी नहीं होता, हर एक को पता नहीं है इसलिए वो कह देते हैं, हर आत्मा एक्यूरेट टाइम पर अपना एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अकाले मृत्यु तो तब हो जब उसका समय ना आया, तो ड्रामा तो कोई गलती करती नहीं है, पर तो वो समझते हैं छोटी आयु में चला गया इसलिए अकाले मृत्यु।
टाइम हाँ
इससे बड़े भी बैठे हैं, एक शरीर छोड़ दूसरा लिया जाता है, ये पुरानी खाल है, शिव बाबा की याद में रहे इस देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाना है, बुद्धि से हम बेहद का त्याग करते हैं, हमारी बुद्धि की रूहानी यात्रा, हमारी बुद्धि योग की रूहानी यात्रा है, वे जिस्मानी यात्रा मनुष्य सिखलाते हैं, बुद्धि की यात्रा बाप के सिवाय कोई सिखलाने वाला नहीं है, ये राज योग सीखने वाले ही स्वर्ग में आएंगे। अब फिर से सैपलिंग लग रहा है, हम सब उस बाप के बच्चे हैं, हम बच्चों को शिव बाबा से वर्षा मिलता है, ये दादा भी शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, आप भी बेहद के बाप से वर्षा लो, ये बड़ी हॉस्पिटल है, हम 21 जन्म के लिए फिर कभी रोगी नहीं बनेंगे, हम भारत की सच्ची सेवा कर रहे हैं, इसलिए गायन है शिव शक्ति सेना, शिव शक्ति सेना। अब बाप कहते हैं याद से अपने विकर्म विनाश करो तो आत्मा शुद्ध बन जाएगी, आत्मा क्या बन जाएगी, शुद्ध बन जाएगी, और ज्ञान को धारण करने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे, हम पवित्र बनेंगे तो लक्ष्मी को अथवा नारायण को भी वरेंगे, सर्व गुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी यहां नहीं बनेंगे, यहां नहीं बनेंगे तो लक्ष्मी नारायण को कैसे वरेंगे, ना लक्ष्मी बन सकेंगे और ना नारायण बन सकेंगे, इसलिए कहा जाता है आईने में अपने को देखो, अपना मुखड़ा देख ले प्राणी, आईने में देखो लक्ष्मी नारायण को वरने लायक बने हैं या हम बंदर के बंदर हैं, पूरा नष्टो मोहा नहीं बनेंगे तो लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे, और प्रजा फिर प्रजा में जाएंगे, शिव बाबा को भी परम धाम से आना पड़ता है, जरूर पतित दुनिया में आए तो पावन बनाकर ले जाए, यहाँ हम परहेज भी बहुत रखते हैं, हमारी एक आंख में स्वीट होम और दूसरी आंख में स्वीट राजधानी है, हम इतनी परहेज रखते हैं हम और कुछ भी इन आंखों से देखते ही नहीं, ये परहेज है, हमारा त्याग सारी दुनिया का है, हम इस सारी दुनिया का त्याग करते हैं, हम इस सारी दुनिया में किसी चीज को भी अपना नहीं समझते, हमारे लिए अपना है तो शांति धाम और दूसरा सुख धाम। घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान पवित्र रहते हैं, बुढ़े समझते हैं वानप्रस्थ अवस्था है, चलो मुक्ति धाम में के लिए, पुरुषार्थ करे। इस समय तो सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, हर एक को हक है बाप से वर्षा लेने का, दुख धाम को भूल जाना है, ये है बुद्धि से त्याग। हम पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल नहीं, दुनिया को याद करते हैं, फिर अंत मति सो गति हो जाती है। ये सबसे बड़ी गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है, भगवानों वाच। मैं राज योग सिखलाकर मनुष्य से देवता बनाता हूँ, ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। बोलो हम जो सुनाते हैं वो बैठकर सुनो, बीच में प्रश्न पूछने से वो परवाह टूट जाता है। मतलब जो हम सुनाना चाहते हैं वो सुनो, बीच में प्रश्न। हम आपको सारे सृष्टि चक्र का राज बतलाते हैं, शिव बाबा का ड्रामा में क्या पार्ट है, लक्ष्मी नारायण कौन है, हम सबकी जीवन कहानी बताएंगे, हर एक की नब्ज देखनी चाहिए, उस समय की वृत्ति देखनी चाहिए। ठीक सुनता है, उस समय उसकी वृत्ति भी देखनी चाहिए कि ठीक सुनता है, तवाई होकर तो नहीं बैठा है, यहाँ वहां तो नहीं देखता है, यहाँ बाबा भी देखते हैं, कौन सामने सुनकर झूमते हैं, वो ज्ञान का डांस है। जो ज्ञान को सुनकर झूम रहे हो तो क्या हो रहा है, ज्ञान का डांस हो रहा है। और यदि वो आंखें बंद करके सो जाए तो क्या नहीं डांस करेगा, तो कोई डांस नहीं, झूम ही नहीं रहा, खुशी नहीं मिल रही ना, ये ज्ञान का डांस है। वे स्कूल तो छोटे होते हैं जो टीचर अच्छी रीति देख सके और नंबर वार बिठाए, और ये तो बहुत बड़ा स्कूल है, नंबर वार तो यहाँ बिठा नहीं सकते, तो देखना पड़ता है किसकी बुद्धि कहाँ भागती तो नहीं, भागती तो नहीं है। मुस्कुराते रहते हैं, खुशी का पारा चढ़ता है, ध्यान से सुनता है, दान सदा पात्र को देना है, जो सुने तो ज्ञान सुनाओ, नहीं तो क्या फायदा। फालतू समय वेस्ट नहीं करना चाहिए, नज देखने की भी समझदारी चाहिए। मनुष्य तो डरते हैं, खास सिंधी लोग समझते हैं, कहीं बीके जादू ना लगा दे, इसलिए सामने देखते भी नहीं, ब्रह्मा कुमारियों की आंखों में देखते भी नहीं। शिव बाबा समझाते हैं, तुम ब्राह्मण हो, त्रिकालदर्शी बनते हो, फिर वर्णों का राज भी समझने का है, हम सो का अर्थ भी समझाना है, हम आत्मा सो परमात्मा कहना रॉन्ग है। कोई फिर ब्रह्मा को भी मानने वाले हैं, कहते हैं अहम ब्रह्मा अस्मि, माया तो पांच विकार हैं, हम ब्रह्मा को मानते हैं, अब ब्रह्मा तो महातत्व है जो हमारा निवास स्थान है, जैसे हिंदुस्तान में रहने वाले अपने हिंदू धर्म कह देते हैं, वैसे वे भी ब्रह्म तत्व को कह देते हैं कि हम ब्रह्म हैं। बाप की महिमा अलग है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, ये महिमा देवताओं की है। आत्मा जब शरीर के साथ है तब उसकी महिमा है, तब उसकी महिमा है। आत्मा ही पतित या पावन बनती है, आत्मा को निर्लेप नहीं कह सकते, इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है, उसको फिर निर्लेप कैसे कहेंगे। अभी बाबा पीस स्थापन करते हैं तो तुम बच्चे बाबा को क्या प्राइस देते हो, वे तुमको 21 जन्म स्वर्ग की राजधानी की प्राइस देते हैं, तुम बाबा को क्या देते हो, जो जितनी प्राइस बाप को देते उतनी फिर बाप से लेते भी हैं। पहले पहले इसने प्राइस दिया, शिव बाबा तो दाता है, राजे लोग कभी हाथ में ऐसे लेते नहीं, राजे जो होते ना वो कभी कोई दे ऐसे सीधे हाथ में नहीं लेंगे, आगे उनके खड़े होते हैं वही लेते, उनको अन्नदाता कहा जाता है, वो देने वाले हैं वो लेने वाले नहीं। मनुष्य को दाता नहीं कहा जाता, भल तुम सन्यासियों आदि को देते हो परंतु रिटर्न फल तो फिर भी शिव बाबा दाता देता है। आपने दिया सन्यासियों को और रिटर्न कौन देता है आपको, शिव बाबा। कहते हैं सब कुछ ईश्वर ने दिया है, ईश्वर ही लेते हैं, फिर कोई मरता है तो रोते क्यों हो, परंतु शिव बाबा कहते ना वे लेते हैं और ना वो देते हैं। मेरा काम ना लेने का है और ना देने का है। वे तो लौकिक माँ बाप जन्म देते हैं, फिर कोई मर जाता है तो उनको ही दुख होता है। यदि ईश्वर ने दिया उसने ही लिया तो दुख क्यों होना चाहिए। बाबा कहते मैं तो सुख दुख से न्यारा हूँ, तो इस दादा ने अपना सब कुछ दिया है, इसलिए फुल प्राइस भी ले रहे हैं। कन्याओं के पास तो कुछ है ही नहीं। यदि उनको माँ बाप देते हैं तो फिर शिव बाबा को दे सकती है। जैसे मम्मा भी गरीब थी, फिर देखो कितनी तीखी गई, तन मन धन से सेवा कर रही है। तुम जानते हो हम सुखधाम जाते हैं वाया शांति धाम। जब तक हम बाप के पास नहीं जाएंगे तो ससुर घर कैसे आएंगे। पियर घर में तो बैठे हैं, पहले बाप के पास जाएंगे फिर ससुर घर आएंगे। ये है शोक वाटिका, सतयुग है अशोक वाटिका। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर एक, इस वानप्रस्थ अवस्था में स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करने के सिवाय बुद्धि से सब कुछ भूल जाना है, पूरा नष्टो मोहा बनना है, पूरा नष्टो मोहा बनना है। बुद्धि योग से बेहद का त्याग कर रूहानी यात्रा करनी है। श्री मत पर पवित्र बन भारत की सच्ची सेवा करनी है। वरदान, श्रेष्ठ कर्म रूपी डाली में लटकने के बजाय उड़ता पंछी बनने वाले हीरो पाटधारी भव। संगम युग पर जो श्रेष्ठ कर्म करते हो, ये श्रेष्ठ कर्म हीरे की डाली है। ये श्रेष्ठ कर्म क्या है? हीरे की डाली है। संगम युग का कैसा भी श्रेष्ठ कर्म हो, लेकिन श्रेष्ठ कर्म के बंधन में फंसना या हद की कामना रखना, ये सोने की जंजीर है। संसार के हद में फंसना, सुख तो दिया आपने परंतु सोने की जंजीर है। इस सोने की जंजीर या हीरे की डाली में भी लटकना नहीं क्योंकि बंधन तो बंधन है, चाहे वो लोहे की बेड़ी हो तो चाहे वो सोने की बेड़ी हो। इसलिए बाप दादा सभी उड़ते पंछियों को स्मृति दिलाते हैं कि सर्व बंधनों अर्थात हदों को पार कर हीरो पाटधारी बनो। क्या बनो? हीरो पाटधारी बनो। स्लोगन है अंदर की स्थिति का दर्पण, अंदर की स्थिति का दर्पण चेहरा है, चेहरा कभी खुश्क ना हो, खुश्क खुशी का हो। अच्छा ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं